मूसा अलैहि सलाम को इतना बड़ा काम मिल गया तो बोले रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे में से एक वजीर मुकर्रर कर दे। कौन? हारून अखी, हारून जो मेरा भाई है, इसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर और इसको मेरे काम में शरीक कर दे खुला दिल। कोई भाई बहनों का आपस में तकाबुल नहीं हुआ कि भाई को भी नबुवत मिल गई तो मेरी नबुवत कम होगी। हमें कॉम्प्लेक्स होता है, चार लफ्ज पढ़ ले हम कहते हैं दूसरे को नहीं बताने वरना वो हमारे जैसा हो जाएगा। कहा नहीं, मेरे भाई को भी दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें। सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे ना, अल्लाह कॉन्शियस थे, इसलिए अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को इल्म की दौलत में शरीक किया और कहा साथ ही तेरा खूब चर्चा करें। हम इस इल्म के साथ अपने झंडे नहीं गाड़ रहे कि लोग हमारे गुण गाएं, हमारे नाम बने। हम तो तेरा दुनिया में चर्चा करना चाहते हैं और तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। कितना खूबसूरत मामला है। आप देखिए कि अल्लाह की जात कैसे हम सबको यहाँ सिखाती है। हम यहाँ बैठे इतने मजे से बैठ रहे होते हैं, अल्लाह कहते हैं नहीं जाओ फसबिला, आप घर जाओ। हम जब इस कुरान की क्लास में होते हैं हमें कितना मजा आता है, लज्जत मीठा हो जाता है मुंह कुरान के और ईमान के जायके पढ़ते हुए। जो ही घर जाते हैं वैसे शुरू हो जाती है लड़ाइयां, शुरू हो जाती है चक चक, शुरू हो जाती है। ये शुरू में होता है। आप अपने घर वालों के लिए दुआएं करें, हजरत मूसा के इस अमल से दुआ कीजिए कि हमारे घरों में दीन के इस तरह से दौर दौरे होने लगे कि हमारे घर में भी हमें कुरान की क्लास वाला मजा आए, गोल बनाए। अगले साल के रमजान से पहले मुझे अपने घर को क्लास रूम बनाना है। समझ गए क्यों कहे? यानी किस तरह से कि घर में भी वही मजा है, वही मियाँ के साथ बातें, कैसे आज ये पढ़ा आज ये सुना। अच्छा बेगम अब क्या पढ़ के आई, बेटा आपने क्या पढ़ा, बेटी आपने क्या सीखा, अच्छा मियाँ जी आपने क्या सीखा। ये वो घर होते हैं जिनको आप होम स्वीट होम कह सकते हैं। बाकी तो सिर्फ वो खाना दे दो, रोटी दे दो, चावल दे दो, ये क्या मसला। ऐसे नहीं लगता कोई होटल है और ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, हमने असल जिंदगी का मजा ही नहीं चखा। और याद रखिए कि इस्लाम इज्तबाईयत को पसंद करता है, इस्लाम अकेले कट के रहने को नहीं देता। जितना इखलास आपके अंदर बढ़ता जाएगा अल्लाह आपके घर वालों में आपको ऐसे रफीक दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके लिए इंसान को अच्छे दोस्त मांगने चाहिए, अपने शोहरों के लिए अच्छी दोस्तियों को ढूंढे, अपने बच्चों के लिए अच्छे दोस्त ढूंढे। और बेहतरीन दोस्त कौन होता है कि जिसकी माइयत में, जिसके साथ में इंसान को अल्लाह याद आने लगे और हर वक्त ये एहसास कि अल्लाह हमें देख रहा है। इस चीजों को देखें और जितना ज्यादा बुरे दोस्तों को छोड़ते जाएंगे अच्छी दोस्तें मिलती जाएंगी, नेकियों के और दीन के सारे रास्ते आपके ऊपर आसान से आसान होते जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह का जवाब सुनिए, क्या शान बेनियाजी है कि तूने मांगा। काल कद ऊती तसुलक या मूसा, फरमाया दिया क्या जो तूने मांगा है मूसा। चुपके से 3 सेकंड में अपने लिए दुआ करे और कहे अल्लाह हमें भी ये सुना कि जो तूने मांगा मैंने दिया। और घर वालों के लिए दीन मांग लो, फैमिली भाइयों के लिए। हम सब अपने भाइयों के दीन की दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे भाइयों को दीन पे ईमान पे सलामती दे और हर किस्म के शर और फितनों से बचाए। और अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कोई पहला एहसान नहीं किया हमने, पहले फिर एक मरतबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वो वक्त जब के हमने तेरी माँ को इशारा किया। सोचे मूसा कहाँ खड़े हैं, तूर के पास, और जारा के बीवी भी है और रात का वक्त है और अल्लाह उनको उनके बचपन की कहानियां सुना रहे हैं कि मूसा आपका बचपन क्या था, कैसा इशारा किया जो वही के जरिए से किया जाता है। इस बच्चे को संदूक में रख और संदूक को दरिया में डाल दे, दरिया इसे साहिल पर फेंक देगा और इसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। अब देखिए माँ की आजमाइश, पहले तो मूसा का खोजा वाल कई था, अब दिखाए माँ कैसी प्यारी थी। मूसा ने तो अल्लाह के हुक्म पे ऐसा फेंका है ना, माँ ने तो बच्चा फेंक दे दरिया में। तो आप और मैं ऐसी माए बने जो मैं मूसा जैसी हूँ, अपने बच्चों को अल्लाह के लिए डाल दे। हम तो बच्चों को बेबी सिटिंग में नहीं डालते, अल्लाह की बनाम कहते हैं हम अपने बच्चे खुद देख सकते हैं, कोई दूसरा देख नहीं सकता। जब तक दिलों से बच्चों को नहीं निकालेंगे अल्लाह का दीन नहीं आएगा। अल्लाह कहते हैं माँ ने निकाला, वल्कई तो अलही का मोहब्बत मिन्नी, एक माँ क्या उससे मोहब्बत करती है मूसा, हमने तो अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी, जो तुझे देखता उस पर प्यार आता। और आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको प्यार बहुत मिलता है, शक्लों की भी जरूरत नहीं है कि इतने फीचर्स नहीं होते, रंग साफ नहीं होता, जो बाजार खूबसूरती के मेयार है, लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद उनको प्यार बहुत मिलता है। तो अल्लाह ने मूसा के लिए बचपन से लोगों के दिलों में प्यार डाला। कई बार फिरौन ने चाहा कि मूसा को कत्ल करा दे, लेकिन मूसा की भोली सूरत पे प्यार आता वो रोक देता। तो ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों से लोग प्यार करें। पिछले पारे से आप ये दुआ मांग रहे हैं ना कि अल्लाह हमारे बच्चों को अपना पसंदीदा बना। तो मैं और आप अपने बच्चों से क्या प्यार करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया का प्यार उनको दे। और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। सोचिए अगर मैं मूसा की माँ की जगह होती तो क्या मैं अपने बच्चे को समंदर के अंदर डाल देती, एक संदूक में डाल दिया करती थी, दूध पिलाती थी, रस्सी बांध देती थी, फिर जब कोई आता जाता होता तो फिर निकाल लेती, कुछ करती रहती थी। और इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि वो रस्सी बांधना भूल गई और मासूम सा मूसा बचपन में आजमाइशों में आ गया। याद कर जब के तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती थी मैं तुझे इसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुँचा दिया। देखिए कितने को दिन रहे, शायद 3 दिन तक माँ से जुदा रहे। इतने दिन तो बाद बच्चे हॉस्पिटल में रहते हैं, पैदा होने के बाद माँ को दिखते भी नहीं। तो अल्लाह के सहारों पे अपने बच्चों को थोड़ा खुद से दूर करें, भेजे उनको दीन सीखने के लिए, उनको इल्म की जगह भेजे, उनको मस्जिदों में भेजे, मदरसों में भेजे। अल्लाह कहता है वापिस पहुंचा दूंगा। और किस तरह पहुंचा दिया कि ताकि इसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। ये है अल्लाह की शान और बहन का किरदार। हम बहने अपने भाइयों के दीन में बुनियादी किरदार अदा कर सकती हैं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को हमारे जरिए से हिदायत दे दे। और ये भी याद करके तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया, हमने तुझे इस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा और तू मदियन के लोगों में कई साल तक ठहरा रहा, अब तू ठीक अपने वक्त पर आ गया। पूरी मूसा की 40 साल की जिंदगी को ये चंद आयतों में समेट के कहा, असल बात अब हो गई। और वो क्या कि अब तू बिल्कुल हमारे कायम किए हुए स्टैंडर्ड पे आ गया। हाईलाइट करना चाहे तो इन आयतों को कर सकते हैं कि वफतन ना कफतूना, हम आजमाइशों पे आजमाइशें तेरी करते गए और सुम्मा जीत आला कदरी या मूसा, अब तू बिल्कुल उस अंदाजे पे आ गया। देखिए कि कोई भी कंपनी होती है वो किसी को हायर करने से पहले कुछ ट्रेनिंग्स में लाती है, कभी उसको मेन जगह पे लाके नहीं बिठाती क्योंकि उनकी कंपनी के नाम का सवाल होता है। कई ट्रेनिंग के बाद कई लोग नहीं होते। आप इसको अपने ड्राइविंग टेस्ट से मिसाल ले लें, कितने अपने अटेम्प्ट्स किए, कितनी कोशिशें की, लेकिन आखिर में कई कोशिशों के बाद आपने टेस्ट क्लियर किया, फिर आपको अपना लाइसेंस मिला, तो फिर ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना। बस अल्लाह अपने काम कराने वालों को इस तरह टेस्टों में डालता है। नहीं अभी ये सुशारा है मुस्तकीम पे नहीं चल सकते, तौबा करो, पड़खच्चे उड़ जाएंगे। इनको तो लगता है हमारा ईमान बहुत है, लेकिन ये तो बुलबुल है, ये तो एक हवा के झोंके से ऐसे गिरेंगे कि अपने आप को पीछे कर देंगे और कहेंगे अल्लाह तू संभाल अपना काम, हम तो घर चले। याद रखिए अल्लाह के दीन के काम करने से पहले बंदे को मेखों की तरह ठुकना पड़ता है। अल्लाह के रास्तों में काम करने के लिए अल्लाह को शीशे जैसे फ्रेजल लोग नहीं चाहिए। हर वक्त सेल्फ कॉन्शियस, हर वक्त तकलीफ में, हर वक्त उनको अपनी जान की पड़ी हुई है, हर वक्त अपनी जात के खौल में। आप में से जितने लोग इस ख्वाहिश को अपने दिल में रखते हैं कि अल्लाह हमसे दीन का काम करे, सबसे पहले अपनी जात का खिसार तोड़े। मत अपना हाल पूछे, मत अपनी नब्जें देखे, मत अपने आप को शीशे में बार बार देखे, मत अपने पहनने ओढ़ने पर फकीर बन के दिखाएं। वल्लाही जब तक आप अल्लाह को फकीर बन के नहीं दिखाएंगे, अल्लाहुम्मा अब्दुका इब्नु अब्दिका, तब तक अल्लाह आपको नहीं चूज करेगा। और हम इतनी अपनी जात को रख रहे, अल्लाह कहते इन्होंने क्या करना है, इतनी आजमाइशें बचपन से मूसा की आजमाइशें करके का अब तू हमारे अंदाजे पे आया, नाउ यू आर ओके, भेज दो इसको सीट पे बिठा दो। ये अल्लाह का मेयार है और अल्लाह का दीन कोई छोटी चीज है। कोई जहाज देता है किसी को ऐसे ही जो चलाओ, पायलट के लिए मेरा लिए सबसे मुश्किल ड्राइविंग टेस्ट होते होंगे, उससे भी पहले कई किस्म की ट्रेनिंग्स, कई किस्म के स्टाइल, क्या कुछ करते हैं। एक डेंटिस्ट थी तो वो कहने लगी कि हम अपनी सीट पे आने से पहले शायद सैकड़ों की तादाद में रूट कैनाल कर चुके होते हैं, फिर हमें इजाजत मिलती है कि अब जाके तुम किसी के दांत से खेल लो। तो दांत से तो आप ना खेल सके, किसी की जान से तो आप खेल ना सके, जहाज से तो खेल लेना, और अल्लाह का दीन जो उठता है मुंह उठा के दीन का काम करना शुरू हो जाता है। अपनी सेहत से कीजिए, लेकिन अगर आपने किसी काम को करना है तो पहले उसको सीखे, जो करवाना चाहते हैं पहले उसको सीखे। अगर आप खुद उस काम पे नहीं है पक्के, आपको आगे जाके इतने बड़े मसले आने वाले हैं कि आप खुदकुशी करने को तैयार होंगे, इतने आपके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगंडे आ जाएंगे। तो इसके लिए तो इंसान को कई छलनियों से गुजरना पड़ता है, कितने हाथ लगते हैं, फिर अल्लाह कहते हैं सुम्मा जीत आला कदरिया मूसा वस्तना तू कली नफसी, और मैंने तो तुझे अपनी जात के लिए पसंद कर लिया। चुपके से दुआ करे अल्लाह तुम मुझे भी अपने लिए पसंद कर ले। उनके ऐसे कत्ल हुआ, फिर अल्लाह कहते तुझे अपने काम का बना लिया। क्या पता चला कि अल्लाह ट्रिम करता है, टेलर मेड करता है। इस तरह से ये कुरान इंसान की जिंदगी पे आता है। अल्लाह को पता होता है ना कि इस काम के तकाजे क्या है, तो अल्लाह की जात बंदे को बताता है। पहले तो पता ही कोई नहीं होता, आज आपको भी नहीं पता, मैं सच बताऊं, आप तो बहुत समझ रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आ गया। आप में से भी कितनों को नहीं पता कि आप कल क्या बन जाएंगे, यकीन से कह सकती हूँ, अल्लाह पे नजरें लगाते हुए कह सकती हूँ कि कल आप वो बनने वाले हैं कि शीशे में अपने आप को देखेंगे, पहचान नहीं सकेंगे। आप सोचें अच्छा हम निकाब करेंगे, मैंने कोई जाहिरी निकाब की बात नहीं सोची इस वक्त। आपके अंदर का टैलेंट, आपकी इखलास, इतनी रगड़ाइयां इस कुरान ने आपकी करनी है कि आपको लगना है कि मैंने क्या जिंदगी बसर की। और जितना अल्लाह की खशियत आपके अंदर आती जाएगी, तड़पे अंदर से तड़पे, बाहर से सरगर्म रहे। हम दोनों में एक काम करके बैठ जाते हैं, बस तड़पे तो बहुत है लेकिन बाहर सुस्त लेसी, कोई हमारे उठने बैठने को देखे और कहे कि इसने क्या काम करना है दीन का। तो अंदर आग लगी हो, अंदर हरारत है और बाहर सुकून हो, अल्लाह ऐसे लोगों को दीन के लिए चुनता है और फरमाया इस तरह से, तुम्हें कहा कि अब करो क्या, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ और देखो मेरी याद में कमी ना करना। ये सारी मैनेजमेंट टीम, सारे स्टाफ के लिए एक जुमला कि दूसरों को सिखाने में अब खुद अपनी नमाजें ना छोड़ दो, दूसरों को कुरान पढ़ा रहे हो खुद पढ़ना ना छोड़ दो, दूसरों को क्लासरूम में बिठा के खुद चाय पीने ना बैठ जाओ, खुद ऑफिस में बैठ के ईमेलें ना चेक करने लग जाओ। यानी जब तक खुद सीखने का अमल जारी रहता है आगे सिखाना आसान लगता है। जब तक आप खुद इस कुरान को रोज सुनते नहीं है आप दीन के काम कर नहीं सकते। और इसकी गवाही कई लोगों के मुंह से सुनी है क्योंकि ये रोज तफसीर की क्लास हम ना सुने तो हम कभी के स्कूल छोड़ के जा चुके होते, क्योंकि जब आगे से पानी नहीं मिलता तो पिछला पानी तो खुश्क होता है। तो यहाँ अपने लिए कमल की बात लिखे, अल्लाह मुझे दीन की आला मंजिलों पे पहुंचा दे। यानी देखिए दीन के काम मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ करने होते हैं। आप में से कल कुछ लोग इल्मी काम करेंगे, कुछ तजवीद में आगे बढ़ जाएंगे, कुछ मैनेजमेंट में आगे होंगे, कुछ क्लीनिंग में अच्छे हो जाएंगे, कुछ खाने पकाने में, वो सब काम आप करेंगे लेकिन अल्लाह की याद से अपने आप को दूर नहीं करना, वरना पेट्रोल नहीं मिलता तो चलती गाड़ियां रुक जाती हैं। वला तनिया जिक्री, अपने आप से पूछिए क्या मैं अल्लाह के जिक्र में सुस्ती तो नहीं बरतती। सुबह शाम के जिक्र पूरे हैं, सुबहान अल्लाह की तस्बीहें पूरी हैं, क्या मैं रात की नमाज से बाद सूरत मुल्क पढ़ती हूँ, सूरत सजदा पढ़ के सोती हूँ। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे, और चेहरों से पता लग जाता है जो लोग नहीं पढ़ते, यकीन करें स्टूडेंट्स के चेहरों से पता चलता है कि इनकी सुबह शाम की दुआएं पक्की हैं कि नहीं। ये नहीं कि बस आप पढ़ रहे थे जी, बच्चों को डांट रहे थे साथ पढ़ ली और चलते हुए, क्या 15 मिनट नहीं है मेरे पास फजर के बाद, कितना को वक्त लगता है। और आप देखिए सारी बेचैनियां दूर हो जाती, ना पढ़ी हो खुद खुद लगी रहती है, बार बार दिन में कई बार खोल खोल के किताब पढ़ते हैं फिर काम में लग जाते हैं। सुबह उठते ही पढ़ लें, सूरत मुल्क पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे, सूरत सजदा में कितने मिनट लगेंगे, जुमे को सूरत काफ पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे, सारे मिनट गिनते जाएं कि आपका अपने ऊपर इतना भी हक नहीं। आप इंसान है, कोई मशीन थोड़ी है, या आप कोई ऐसे तो नहीं कोल्लू के बैल की तरह जुते हुए। और फिर मान लीजिए कि आपकी मसरूफियात है वो बिल्कुल अननेचुरल है, कोई औरत या कोई मर्द इतना बिजी नहीं होता कि उसको अल्लाह की याद का वक्त ना मिले। इस हवा इला फिरौन इन्नहु तगा, जा तू फिरौन की तरफ उसने सरकशी की हुई है। क्या आज हमें फिरौन नहीं दिखते जो दुनिया में सरकशियां करते हैं, लेकिन हम अभी तक तो उस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं करते, हम कहते हैं हमारा तो अभी अपना ही हाल बड़ा खराब है। फरमाया जाओ फिरौन के पास लेकिन इससे नरमी से बात करना, ये नहीं कहा कि वहां जाके बड़के मारना, ढोंस दबाना और धांधलियां करना और उसको जाके उसके सामने तुम एजिटेशंस करो और मुक्के मार मार के दिखाओ। नरम दमे गुफ्तगु, गरम दमे जुस्तजू, ये दो मेयार अल्लामा इकबाल ने दिए थे। नरम दमे गुफ्तगु, तुम्हारा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग शुड बी वेरी सॉफ्ट, लेकिन गरम दमे जुस्तजू, अंदर इतनी आग है किसी को फारिग बैठने ही ना दो। ये अच्छे लीडर की खूबियां, अंदर से मोटिवेटेड है। लोग कहते हैं करेंगे, सोचते हैं, अभी मीटिंग करते हैं, कल क्या करना है, भैया आपने बताया ही नहीं, सोचा ही नहीं, शुक्रिया आपके ख्याल दिलाने का। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जिन्होंने काम करने होते हैं वो रातों को प्लानिंग करके सुबह अनाउंस कर देते हैं कि हमने ये काम करना है। और हमारे पास कितने मौके आते हैं, देखिए 20 रोजे के करीब पहुंच रहे हैं हम लोग, कहां हम करीब से करीब पहुंच रहे हैं रमजान के खत्म के, क्या नेकियों के प्लान हुए, क्या इरादे बने, क्या ये रमजान सिर्फ बंजर गुजर जाएगा, क्या इसके बाद फिर वही हम अपनी रूटीन पे आ जाएंगे ठुक 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 चलते हुए। हर रमजान में नई नेकियों के बीज डले, कहाँ होगा, क्या करेंगे, उधर क्या करेंगे, उधर क्या करेंगे। तो अल्लाह कहता है जाओ लोगों को बताओ, वो सोए में उनको जगाओ, हाँ बात नरमी से करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। फिरौन से अल्लाह मायूस नहीं है तो हम आप अपने दोस्तों से क्यों मायूस है, हम अपने साथियों से क्यों मायूस है, ये हमारे ईमान की कमी है। हमारे दोस्त इतने बुरे तो नहीं है, मैं तो नहीं मानती कि हमारी दोस्तें इतनी बुरी हैं, हम इसको इस तरह तो नहीं ले सकते। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे खानदान दिए हैं, क्या हमारे सारे खानदान वाले कठोर हैं, इतने सख्त दिल है, क्या हमने ऐसे लोगों में जिंदगी बसर की है, नहीं, तड़प नहीं है, अभी यकीन नहीं है। एक खाने की दावत पे बुलाते हैं 25 लोग जमा हो जाते हैं, एक शादी की दावत करते हैं 200 लोग जमा हो जाते हैं, तो क्या उसी जुबान से जब कुरान की दावत दे तो लोग ना माने, ये नहीं हो सकता। अभी वो तड़प और अभी वो हमारे अंदर चीज नहीं आई। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हकीकत में हकीकत शनास बना दे। कभी लोगों के बारे में रॉन्ग एस्टिमेशन न रखे। हमने बहुत सारों के बारे में रॉन्ग एस्टिमेशन रखे हुए, इसकी वजह क्या है कि हमें अभी बात करने का सलीका नहीं आता, हमें भी बात करने का तरीका नहीं आता। तो वक्त का फिरौन ही क्यों ना आपके सामने आ जाए, बात करते वक्त ये सारे मैयर्स को पूरा करें और फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे आपकी बात उसके दिल तक पहुंचाते हैं। और अगर दिल में बात नहीं भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, आपको अजर फिर भी मिलेगा। अला रब्बना इन्नना नखाफ अन यफ्रुता अलैना व अन यतगा। अब वो सारे वसवसे जो आपके दिलों में आ रहे हैं ना मेरी बात सुन के, कि हम बताते तो हैं लोग मानते नहीं, करें क्या, सच्ची शर्म बड़ी आती है, सच्ची दिल बड़ा चाहता है, फिर मैंने कहती है चलो फिर इफ्तारी पे तो आ जाना, उस पे सारे आ जाते हैं। ये सारे अंदेशों का जवाब आपको इस अगली आयत में मिल रहा है कि आखिर मूसा और हारून भी तो नबी थे, अंदेशे उनके भी दिल में आए इन सारी चीजों को सुनकर, तो कहने लगे अल्लाह हम क्या करें, हमें तो बहुत सारे अंदेशे आ रहे हैं। क्या दोनों ने अर्ज किया, परवरदिगार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या हम पर पिल पड़ेगा। क्या हमें अपने रिश्तेदारों से इतना भी अंदेशा है कि हमें मारेंगे, पुलिस को फोन कर देंगे कि ये हमें कुरान की तरफ बुलाते हैं या हमें नमाज के वक्त में फोन करते हैं? नहीं, हमारे लोग इतने बुरे नहीं हो सकते। फरमाया डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मांगिए अल्लाह का साथ बंदे को किस तरीके से दूसरों से बेनियाज करता है। इतना ज्यादा बंदा अल्लाह पर नजरें लगाने वाला बन जाए कि दुनिया की कोई ताकत उसके सामने आ जाए या इसको कहीं पढ़ना पड़े तो नो प्रॉब्लम, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। क्या अल्लाह की जात बड़ी है कि छोटी है? नबी सल्लम की इतनी खूबसूरत दुआएं हैं कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लम ने दुश्मनों के खिलाफ दुआएं सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। क्या अल्लाह हम तुझे इनके सीनों पे रखते हैं? इनकी क्या जरूरत है कि मुसलमानों के सीने काटे, इनके गले काटे, हम तुझे इनके गले पे रखते हैं, तू एक दफा इनकी तरफ करके देख। वो सारी दुआएं आज के रात में आप पढ़ सकते हैं, तो दुआएं मांगिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद कर और गैर मुस्लिमों के ऊपर तू अपनी पकड़ लेके आ। लेकिन हम वो काम उस तरह कर नहीं पाते अमूमन जिस तरह करने की जरूरत है। तो कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब सुन रहा और देख रहा हूँ, जाओ उसके पास और कहो कि हम अपने रब के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और इनको तकलीफ ना दे। टू दी पॉइंट बात है, कोई इधर उधर की तसल्लियां और दिलासे नहीं दे के फिरौन और प्लीज और फला, सीधी सीधी बात कर दी। और अगर तुझे कुछ चाहिए तो हम तेरे पास रब की निशानी लेकर आए हैं, सलामती है उसके लिए जो राह रास की पैरवी करे। ये नोट करे, कामयाब वो होगा जो सीधे रास्ते पे चलेगा। हमको वही से बताया गया कि अजाब है उनके लिए जो झुटलाए और मुंह फेरे। قال فمن ربكما يا موسى। अब यहाँ से जरा फिरौन की बुखलाहटें तो सुनिए कि उसका हाल क्या है। फिरौन कहने लगा अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा, क्योंकि वो तो खुद को रब कहता था ना, अना रब्बुकुम अलआला। मूसा ने जवाब दिया हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त बख्शी। ये है तबलीग के इब्तदाई नुक्ते, अल्लाह की बात करे, मखलूक को बताएं। दावा का बेस्ट तरीका क्या है कि पहले क्रिएटर पे बात करो, जाते ही कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ना शुरू कर दो, नमाज पर्दे की बातें शुरू ना कर दो और ऐसी बातों में नॉलेज हो जिसको माशरे ने और इस तरह से मीडिया ने प्रोपेगंडे का शिकार कर दिया। सीधी सी बात अल्लाह की बात करो, कहा कि उस रब को देखो कि जिसने तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया, और सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि पैदा करके छोड़ने की वजह सुम्मा हदा, फिर इसको रास्ता बताया, जीने का तरीका सिखाया, मछली के बच्चे को तैरना सिखाया, परिंदे के बच्चे को उड़ना सिखाया, और होते होते हम सबको जन्नत में जाना सिखाया।